नमस्कार ठाकुर के चरण कमों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतितात्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता था। तो चैतन्य भागवत में लिखा है पतितात्माओं के उद्धार के लिए, तो उनकी जीवनी के विषय में चर्चा करेंगे। शिवा पंडित जी भारतजा यानी उनकी जो भतीजी नारायणी देवी गोलांग महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर बाल्य काल में ही भगवत प्रेम में उन्मत्त हो। जो नारायणी देवी थी वो शिवा ठाकुर जी की भतीजी थी और महाप्रभु जी वहां निर्णय कर रहे थे, उन्होंने अपना महाप्रसाद उस बालिका को दिया और महाप्रभु का महाप्रसाद पाते ही वो प्रेम कर सारे प्रेम का शिक्षण और परवर्ती काल में उन्होंने वृंदावन दास जी को जन्म दिया और उन्हीं के पुत्र थे वृंदावन दास जो नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य। अपने गुरुदेव के आगे पर उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना श्री गुरु गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी कृष्णदास कविदास रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे वैष्णव लेखों में समाने का एक नियम है कि वे स्वयं को अप्रत्यक्ष रखते हैं। वे अपनी वंश परंपरा अथवा व्यक्तिगत इतिहास का कभी भी उल्लेख नहीं करते। श्री गोस्वामी के पद्यावली में संग्रहित सर्वाधिक स्मरणीय एवं सरल श्लोकों को एक रचयिता अभ्यास सोनी काव्य में विलक्षण आलौकिक गद्य एवं पद्य से मंडित समस्त ग्रंथ गर्व ही वैष्णवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए जिन्होंने अभ्यास रहना ही पसंद किया। अतिशय विनय शीलता से वैष्णव रचना का केवल अपने गुरु वर्ग के प्रसंग में ही स्वयं को व्यक्त करते हैं। कृष्णदास कविदास चैतन्य चैतन्य के प्रत्येक अध्याय के अंत में अपने गुरुवर का गुणगान करते हैं। श्री गुरु प्रभुनाथ पद्य या आज चैतन्य चैतन्य करे कृष्णदास। तो जितने भी ये वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं वो अपने आप को हमेशा बैकग्राउंड में रखते हैं, अपना गुणगान देते और जो भी करेंट है गुणगान है अपने गुरुवर को देते हैं। श्री गुरु के प्रभुनाथ के चरणबिंदों की प्रति याचना करते हुए हम सदैव उनकी कृपा की आशा करते हुए मैं कृष्णदास उनके पदांकों का अनुगमन करते हुए चैतन्य चैतन्य का मनन करता हूँ। श्री कृष्णदास कविदास गोस्वामी चैतन्य चैतन्य में अंत्य 20-82 में वृंदावन ठाकुर को व्यास की उपाधि से सम्मानित कर उनके प्रति परम आदर व आभार प्रकट करते हैं। वृंदावन ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र है, अतः वे चैतन्य लीला का वर्णन करने वाले आदि जात से जिस प्रकार श्री व्यास जी ने भागवत एवं अन्य प्राणों में श्री कृष्ण की लीलाओं का निरूपण किया है उसी प्रकार श्री वृंदावन ठाकुर ने चैतन्य भागवत में चैतन्य लीला का वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज का विनीत हृदय वृंदावन ठाकुर की ओर अधिक प्रशंसा करता है। चैतन्य भागवत का श्रवण सर्व अमंगल का नाश करता है। चैतन्य भागवत के पठन द्वारा व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ पाएगा और वह ज्ञान की परम सीमा प्राप्त करेगा शुद्ध कृष्ण प्रेम। चूंकि इतना अद्भुत ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा नहीं रखा जा सकता ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने श्री वृंदावन ठाकुर के मुख से का उच्चारण किया। मैं वृंदावन ठाकुर के पदारविंदों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। ऐसा अनुभव ग्रंथ दर्ज कर उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्कर से सकल विश्व का उद्धार किया। मोरू द्वीप के मामागाछी में वृंदावन ठाकुर के निदाई गोदाम एवं जगन्नाथ के अर्थ गुरुओं का प्रतिष्ठापन किया। वे वहां एकाकी रहे तथा अपने प्रिय गुरुओं की पूजा की। वृंदावन ठाकुर के अनेक शिष्य थे जिनमें केशव भारती के वंशज गोपीनाथ ब्रह्मचारी भी सम्मिलित थे। श्री कृष्ण लीला में वृंदावन ठाकुर श्री व्यास देवी है, उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में विराजमान है। वृंदावन ठाकुर जी जो कि शिवा स्वामी जी के नारायणी देवी के पुत्र और बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की और उस परि ग्रंथ में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जन्म को काम किया। तो आज हम उनसे कृपा चाहते हैं, कृपा की याचना करेंगे। उनका जो मुख्य ग्रंथ लिखने का प्रयोजन था नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु लीला का वर्णन कीजिए, तो मुख्य का बाल लीला का बहुत विस्तार में वर्णन किया उन्होंने और अंत्य लीला का वर्णन हुआ है चैतन्य चैतन्य। तो इन ग्रंथों के रचने का मुख्य उद्देश्य यह है पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा का प्रकाश और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि गली गली गांव गांव में लोग इसको जाने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कलयुग में कोई राधा कृष्ण की भक्ति में नहीं हो सकती। इसलिए हम सब बोलिया वैष्णव को चाहिए कि चैतन्य भागवत को भी पढ़े, महाप्रभु की महिमा को हम समझें हुई है, दस कृपा को बांटे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। रविनाथ ठाकुर जी की, रविनाथ ठाकुर रविभाव की महा महोत्सव की हम पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवत नामस्कंद सेवा है श्लोक संख्या 7 और 8। तो अध्याय का नाम है महाराजा निमी की वंशावली, श्लोक संख्या 8 और 10। राज्यो जीवतु देहोऽयम्,
राज्यो जीवतु देहोऽयम्,
सन्ना प्रभवो यदि,
सन्ना प्रभवो यदि,
एकृत्ते निमित्ताः,
एकृत्ते निमित्ताः,
मा मुन्ने देहबन्धनम्,
मा मुन्ने देहबन्धनम्,
राज्यो जीवतु देहोऽयम्,
राज्यो जीवतु देहोऽयम्,
सन्ना प्रभवो यदि,
सन्ना हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देव
चिंता ग्रहण केंद्रीय भोग में ही बलशाली है। प्रत्युत वे नृत्य शरीर को जीवित करने में ऐसा कार्य भी कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं। धारिता सावित्री सत्यवान कथा में सत्यवान मर चुका था और उसे यमराज ले जा रहे हैं, किंतु पत्नी सावित्री के आग्रह पर सत्यवान का वही शरीर फिर से जीवित हो उठा था। यह देवताओं की शक्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। गम वस्तु करते हम विधाय मुनि सत्तर समाप्त सक्रिया के देवानुषु समाप्त जगह संपन्न करते समय महाराज मुनि द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुरक्षित रखा गया तथा सत्रिया के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सारे देवताओं से निर्मित प्रार्थना की। तो यह प्रसंग अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ। आप इसे जो लोग केवल सत्रह में एक आते हैं नहीं होते। अध्याय का नाम है महाराज जिनी की वंशावली और महाराज जिनी एक शौक के पुत्र हैं, सूर्य वंश के हैं और ये सूर्य वंश का जो व्याख्या करते हुए ये नवे स्तंभ का आखिरी अध्याय सूर्य वंश पर इसके बाद चंद्र वंश का व्याख्या शुरू हुई। तो महाराज जिनी ने एक यज्ञ करना था और उस यज्ञ में उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आप मुख्य वशिष्ठ ने कहा ऑलरेडी मैं भोग लू मुझे इंद्र जी ने कहा है इंद्र के पास जाऊंगा तो मैं जाऊंगा वहां यज्ञ करके आऊंगा सबसे का प्रतीक्षा की। राजा निधि को बताया गया आत्मवान जो सेल्फ रियलाइज हो गया अध्यात्म को मेरा मैंने कुछ जानते थे भक्ति के विषय में आत्मज्ञान के विषय में। तो उन्होंने सोचा जीवन तो बहुत ही नश्वर है कभी भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। वो देवताओं के लोक में गए तब वापिस आएंगे मैं प्रतीक्षा ही करूंगा सुबह से शीघ्र यज्ञ कर देना चाहिए। उन्होंने रुके नहीं यज्ञ कर दिया किसी और पुरोहित को बैठा यज्ञ करना था ऊपर जाके विशिष्ट और शिष्ट और बुलाया ये तो मर्यादा का विक्रम है आपने उल्लंघन किया मेरी आज्ञा को माने नहीं और इतनी गहरे पाई कि आपने प्रतीक्षा क्यों नहीं की और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया राजा जी को आप नहीं सही किया। राजा जी को लगा ये तो बात सही नहीं है जब भी तो करो भी गलत काम कर रहा और इन्होंने क्यों उनके क्रोध किया तो राजा निधि ने भी क्रोध में विशेष जी को कहा आप ही शरीर क्या और उसी समय दोनों ने अपना शरीर दिया दोनों ने अपना शरीर दिया। तो भागवतम ने हर प्रकार के चली हुई मिल जाती सभी होता है और इसे मान सकता है कि भक्ति अलग ही विज्ञान है लेकिन भक्ति स्टीरियो टाइप नहीं ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कई बार लेकिन बहुत एक्सट्रीम ये जो केसेस होते हैं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं इसका मौका देके हम ये ना करें कि हम भी गुरु जी को शाप देना शुरू कर दें हम उनसे लड़ा तो आप हमसे आपसे लड़ा ये समझने की बात है। लेकिन हाँ ऐसा भी हो जाता है कि दिखावे जो वशिष्ठ थे लोभ के कारण अपने धर्म से वो चुप हो गए उनको ज्यादा वहां पर दक्षिणा मिलती थी इंद्र लोग उनका लोभ था इस कारण लोभवश वो अपना विवेक खो रहे और उन्होंने श्राप दिया और राजा जी ने बोला कि सही नहीं है तो उन्होंने उनको श्राप दिया। अब जो वशिष्ठ जी ने अपने श्री त्यागा तो वशिष्ठ जी का पुनः जन्म हुआ और उनके जन्म के माध्यम बने ऋषि को देखकर दो ऋषिगण थे जिनका नाम था मित्र तथा बनु उनके वीर्य से उनको ऋषि को देखा जो कि स्वर्ग लोक की बहुत सुंदर रचना है तो वो कामुक हो गए उनका वीर्य स्खलित हुआ उस वीर्य को सम्मान कर रखा गया और उससे दोबारा से विशेष रखा। अब राजा के यहां पे जो यज्ञ चल रहा था राजा जी के यहां पे वो यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ संपन्न करने जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा उस शरीर को प्रिजर्व किया गया सुगंधित देवों में आज के साइंटिस्ट इतना प्रयास कर रहे हैं हम देख सकते हैं कितना विज्ञान उत्कृष्ट था सुगंधित देवों में उस शरीर को संभाल के रखा गया। अगर यज्ञ संपन्न हो गया तो ऋषिगण और ब्राह्मणों ने जो यज्ञ संपन्न किया सभी देवता महाप्रेरित हो पूर्व काल में इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल होता था एक ग्रह से दूसरे ग्रह मुकाबले जाते थे नेता लोग आमंत्रित करने में वो आते थे, नेता आए और सब ऋषि और संतों ने नेताओं से निवेदन किया कि राजा नहीं को आप जीवित कर दीजिए किसी शरीर में। यहां देखते हैं तो ऋषिगण है, वो ऐसा नहीं है कि अनकंसर्न है, जो होया होने जो होने गया हम तो अपना लगे रहेंगे लेके करते रहेंगे, नहीं। प्रभा देखते हैं भावना के छोटे स्तर में राजा बेट के प्रसंग में कि जो कर्मी होते हैं वो अपने लिए मत रहते हैं कि मैं भोग करता दुनिया की उम्र सीख, और जो ज्ञानी होते हैं वो भी अपने मत रहते हैं ठीक है मैं तो छोड़ के आना है दुनिया जैसी मर्जी है तो सत्य है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको बहुत चिंता होती है, सभी जनसाधारण की चिंता होती है। उन्होंने कहा कि ये दादा नहीं रहेंगे उन्हें राज्य में आर्द्रता फैल जाएगी तो लोग अपने धर्म का पालन कैसे कर पाएंगे, इसलिए राजा को होना तो बहुत जरूरी है। हालांकि भक्तगण किसी राज्य शासन पॉलिटिक्स में सीधा प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं वो चाहते हैं कि अनुकूल जय श्री राधा रमण करण जी की तो उन्होंने देवताओं से निवेदन किया कि आप राजा को इसी शरीर में पुनः जीवित कर राजो राजो जीवित देहो या किसी देह में प्रसन्न, यदि आप इस शरीर से प्रसन्न है तब हो और यदि आप में समर्थ है तथा इसी प्रत्याप्त देवताओं का तथास्तु तथा ऐसा ही हो कि राजा जब जीवित हो जाए। लेकिन नीचे निधि बोल पड़े, निधि रहा, निधि ने बोला मां भूत में ना भूत में देह बंधनम, नहीं 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 मुझे शरीर नहीं चाहिए, मैं दोबारा से फंसना नहीं चाहता। तो यहां पे प्रभुपाद जी मुख्यतः देवताओं के स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, तो आगे हम देवताओं की क्या पोजीशन है और दूसरा राजा निधि का इतना सुंदर ये वैराग्य है तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि देवतागण मनुष्यों से कई गुना ऊंचे पद पर होते हैं और ऊंचे पद पर देवता भी जीव है, ब्रह्मा जी भी जीव है, लेकिन ब्रह्मा जी में कितनी शक्ति है कि पूरी सृष्टि की रचना विसर पूरे ब्रह्मांड की रचना की, हर ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों की रचना की, हर योनि के लिए अलग सुविधाओं की रचना की, उनके पास कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई टीम नहीं, कोई फंड नहीं, हम यहाँ एक बिल्डिंग बनानी हो मुझे कितने फंड इकट्ठे करने पड़ते हैं, और देखिए स्वयं भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान संचालित किया और ज्ञान के आधार पर पूरी सृष्टि की रचना कर दी, कितने सशक्त जीव हैं, कितनी शक्ति है उनके पास, किसी ढंग से सूर्य देव देखते हैं, इंद्र देव देखते हैं, वरुण हैं, कितने ही देवतागण हैं, 33 करोड़ देवतागण हैं, सबके सब एम्पावर्ड हैं भगवान द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्राप्त, और हमारा पूरा जीवन देवताओं की कृपा पर निर्भर है, देवतागण हमें सब कुछ प्राप्त करवाते हैं और हम उसका भोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है, चंद्रमा की रोशनी के बाद सारी औषधियां सारी वनस्पतियों में रस आता है, तो पशु पक्षी में ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जान सकते हैं सब देवताओं की कृपा, हमारे एक शरीर का एक एक अंग देवताओं द्वारा नियंत्रित, हम बाजू मिला सकते हैं इंद्र देव की कृपा है, हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं सूर्य देव की कृपा है, एक एक अंग हमारे देवताओं द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित है। तो इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं कई बार तो नाथ वर्ष के कारण हम देवताओं की अवहेलना करनी शुरू करते हैं, बताया जाता है कि सर ब्रह्मान पर किया गया मां ने कम शरण में भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, और भगवदगीता में देवताओं के उपासकों की निंदा की गई, देवताओं की निंदा नहीं की गई, काम देखते रथ जाना प्रपत्ति अन्य देवता जिनका हृदय काम आसनाओं से बिल्कुल जिनका ज्ञान भर लिया गया है वो देवताओं के पास जाते हैं, इसमें देवताओं की निंदा नहीं है, निंदा करती है देवताओं के उपासक की, उनकी जो मानसिकता है भोगने की मानसिकता उसकी निंदा की गई, लेकिन कम ज्ञान के कारण हम बोलते हैं देवताओं की उपासना भी खराब है देवता भी सकाम, हम तो अन्यम लक्ष्य शून्य हम और उस कोटि के पास और देवता ऐसे सकाम कनिष्ठ अधिकारी के लक्ष्य कनिष्ठ मानसिकता,
कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं मैं और भगवान बस।
लेकिन वो ये कहते हैं भगवान की महिमा इतनी बड़ी है तो भगवान के भक्त उतने महान है, तो भगवान के भक्तों की महिमा को समझने का आनंद ही है। वो समझते हैं सबसे महान तो नहीं देवताओं से विशेष, और इस कनिष्ठ मानसिकता के कारण हम देवताओं की आप देखना। दूसरा कारण है कि देवताओं के उपासकों की जब निंदा की गई तो सबसे देवता भी करा, जिनके उपासक कहते हैं वो भी ऐसे लोग, लेकिन देवताओं के उपासक की मानसिकता को गलत कहा। जैसे प्रभुपाल जी अक्सर एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं कि देवता का उपासक काली के मंदिर में गया और उसने दो प्रार्थना की और कहा कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, और इच्छा पूरी हो जाएगी एक बकरी बलि चढ़ाऊंगा। इच्छा पूरी हो गई तो भूल गया बकरी को नहीं चढ़ाना, दोबारा काली के मंदिर में गया, बोले भाई इच्छा तो पूरी हो गई बकरी कहाँ है, बोले बकरी तो बहुत महंगी है, औकात नहीं है बकरी के। तो काली के देवी इसलिए मतलब ये हो कुछ तो दो अपने तो सुबह ले लो क्या ठीक है देखता हूँ। फिर किसी भाई आया क्या कुछ भी नहीं आया अभी तक, क्या सुबह मिल नहीं रहा कहीं है और सुबह मिलते हैं क्या क्या अभी देखिए ना ऐसी व्यक्ति हो जो नहीं बोलते चलो मैं ऐसी चीज बता दू कुछ तो दो जो आसानी से करता एक मक्खी दे दो मक्खी ये देवी माँ इतनी मक्खियां मिल जा रही है पकड़े खा लो उपोहित कर। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवताओं में के उपासकों में कोई सेवा की बात नहीं, कृष्ण को भी आनंद नहीं देती, कृष्ण से प्रसन्न होते, इसलिए कृष्ण ने कहा है देवताओं की उपासना मत करो, ये मानसिकता है घूमने की उपासना। तो ये दूसरा कारण बनता है कि जो नए नए भक्त होते हैं मुझे काम मिलना करते हैं। और तीसरा कारण है कि जब हम देखते हैं कि देवता मन इतना भोग करते हैं सुंदर अवस्थाएं हैं सोमरस है सुंदर सुंदर उद्यान है वहां पे उनका शरीर बहुत स्वस्थ है और हर चीज सोचते हैं मुझे ये सुविधा क्यों नहीं प्राप्त है तो द्वेष द्वेष। और जब उनसे कोई गलती करते भागवत में पढ़ना बड़ा मजा आता है, देखा इंद्र पक्ष है क्या है इतनी ऊंची पोस्ट है इतनी सुविधाएं जो भागवतम में कुछ देवताओं का इंद्र का प्रसंग आता है या चंद्र का प्रसंग आएगा हम देखेंगे वो कुछ केस में ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरा दिन ऐसा ही करते रहते हैं, इतना लंबा जीवन है और उसमें भी कुछ गतियां होती हैं लेकिन तुरंत उन गतियों को सुधार के भगवान की शरण में रहते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं हमें थोड़ी सी पावर मिल जाए, पावर का एक अलग नशा है, होश का एक अलग नशा है और उसमें हम एक व्यक्ति बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अपने हृदयों के प्रभाव से कुछ भी करते किसी के प्रति अपराध करते। और जब इतनी पावर मिलेगी आप सूर्य से इतने पावर को नाम देखिए फिर भी देने के हमेशा ही अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ हमें सिखाने के लिए ऐसे प्रसंग आते हैं। तो द्वेष के कारण भी हम देवताओं की अभिमान करते हैं, ये बताया गया है कि देवता गण खाली भोग विलास में उन्नत नहीं है, शक्तिशाली है भगवान के बहुत प्रिय है, भगवान के विभाग पूरे इस ब्रह्मांड के प्रशिक्षण प्रशासन को देख रहे हैं। जैसे कनिष्ठ अधिकारी के प्रसंग में जो राजा निमि को ब्रह्मयोग निर्देश दे रहे हैं उसके तात्पर्य में मध्वाचार्य जी क्या लिख रहे हैं, मध्वाचार्य लिख रहे हैं विष्णु उपेक्षकम सर्वे विद्वेश अधिकम सुरा पत्यत्य वश्यम तंत्री हरिणा देश पातिता की देवता लोग का भगवान के भक्तों को क्या एटीट्यूड, वो कहते हैं जो व्यक्ति भगवान विष्णु का आदर नहीं करता उसके प्रति सारे देवता शत्रु भाव रखते हैं, भगवान विष्णु का आदर नहीं करता उसके सारे देवता शत्रु भाव रखते हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान तथा देवताओं द्वारा घोरतम नरकों में गिरा दिया जाता है। तो माधव कह रहे हैं इस कदर से देवताओं के भक्ति भाव को समझा जा सकता है, देवताओं का कितना भक्ति भाव है, जो विष्णु के भक्त नहीं है उनके प्रति देवताओं को शत्रु भाव। और जब कोई भक्त जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है तो सभी देवता बहुत पसंद है। संपुराण में कहा गया है कोई जीव सोचता भी है कि मैं हरे कृष्ण नामक जब शुरू करूंगा तो ब्रह्मा जी आप ही खड़े हो जाते हैं इसके चरणों की आरती का, इतना महान जीव है।
प्रभुपाद जी करते हैं, देखकर लाइन में खड़े इस हरे कृष्ण आंदोलन में भाग लेने के लिए महापुर लीला में देखता आखिर तो यह साधारण मनुष्य बनकर और संकीर्ण लीला में भाग लेते हैं। इसलिए देवता गण भी भगवान के ही भक्त हैं और हमें उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनको पूरा आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। चैतन्य भागवत ने आज मैं सोचा था और संयोगवश चैतन्य भागवत में इसके ऊपर प्रसंग आता है, आज वृंदावन सागर जी का विवाह दिवस भी है, तो चंद्रशेखर आचार्य जो कि सची माता के भाई थे उनके घर में चैतन्य महापुर पाठियों के साथ एक नाटक रचा और उस नाटक में महाप्रभु लक्ष्मी जी बने और इतना सुंदर उनका रूप कोई मंत्र को पहचान नहीं पा रहे, सची माता नहीं पहचान पा रही इतनी बीमारी और नित्यानंद प्रभु भी एक वृद्ध महिला बने, हरिदास ठाकुर जी एक द्वारपाल बने, तो बहुत सुंदर नाटक चल रहा था। आज चैतन्य महाप्रभु जो लक्ष्मी जी का रूप धारण किया हुआ था वो अलग अलग भाव दिखा रहे थे, कभी लक्ष्मी जी का भाव प्रकट कर रहे थे, कभी रुक्मिणी जी का भाव प्रकट कर रहे थे, मोक्ष के पद से ये ब्राह्मण थे कृष्ण आए कि नहीं वो लोगों के चारे हाँ रुक्मिणी देवी है, कभी चोर के हंस के महाचंडी का भाव प्रकट कर रहे थे, कभी गोपी का भाव प्रकट कर रहे थे, तो अलग अलग भाव प्रकट। तो इसके प्रसंग में वृंदावन ठाकुर जी कहते हैं कि महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं व्यापदेश महाप्रभु सिखाय सवाले भाषा मोल शक्ति को जाने निंदा करे। भगवान ये लीला की क्योंकि कोई भी भगवान की शक्तियों की निंदा ना कर सके, भगवान की शक्तियों को निंदा ना कर सके। तात्पर्य में जब भक्ति ठाकुर जी लिख रहे हैं श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति है और उन्हीं से ही सारी शक्तियां अवतरित हुई है, तो भगवान ने अपने लीला से दिखा रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम शक्ति मान की पूजा करते हैं तो उनकी शक्तियों को भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगले प्यार में कह रहे हैं लौकिक वैदिक किचु कृष्ण शक्ति सवार समाधि हाये कृष्ण दृढ़ भक्ति। भगवान की लौकिक और वैदिक, लौकिक शक्तियां और दिव्य शक्तियां हैं, इनको कोई सम्मान करता है तो कृष्ण भक्ति दृढ़ हो जाती है। सम्मान करना चाहिए, अगर सम्मान नहीं करता तो उसका उल्टा प्रभाव शक्तियों का सम्मान करना चाहिए, यानी कि जब भी हम सूर्यदेव को देखें तो हम नमस्कार करें और उनसे मांगे क्या कि हमें कृष्ण भक्ति। भक्ति ज्ञान ठाकुर जी से बहुत रचित तात्पर्य देते हैं, वो कहते हैं कि सभी शक्तियों को सभी देवताओं को क्या लिखना चाहिए, एज अ मेड सर्वेंट ऑफ द गोपीज, गोपियों की मेड सर्वेंट के रूप में देखना चाहिए और तब कृष्ण में हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए। यानी जहां जाए हमें कोई इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवताओं के मंदिरों में जाए और उनकी अलग से पूजा करें, नहीं, हम जाते हैं हमें उनके देवताओं का मंदिर दिखाई देता है, हमें जरूर रुके उनको प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके उनसे हमें ये दर्शन करनी चाहिए कि मेरी कृष्ण भक्ति में दृढ़ता करे, आप कृष्ण के भक्त हैं, उनको कृष्ण के भक्त के रूप में देखना। और जो एक सिंसियर भक्त होता है वो तो एक बहुत बड़ा भिखारी होता है, वो तो मौके ढूंढ रहा होता है किससे भीख मांगू भक्ति की कृपा की, और ये जो देवता गण है कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त है जिससे मुझे भक्ति की भीख मांगे। जितने महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया, महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो क्या कहते जा रहे थे, कृष्णा 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 कृष्ण का नाम दे रहे थे, यहां देवता का मंदिर आता शिव जी का मंदिर आता, रुकते शिव जी के दर्शन करते, खूब नृत्य करते और उनसे प्रार्थनाएं करते। उन्होंने अष्टकम लिखा शिव जी के गुणगान में, ऐसा नहीं है, उन्होंने आश्रम से लिखा है, वो घूमते हुए जब वापिस आ रहे थे जगन्नाथपुरी कोल्हापुर से होते हुए महालक्ष्मी का मंदिर वहां पर भी हो गए, वहां पर उन्होंने खूब नृत्य किया। इसलिए भक्तों को यह सीखना है कि हमें देवताओं की जिसे कहते हैं जब हम शिव शिव में जुड़े थे आंदोलन है, वहां के अलग देवताओं को पा सकते हैं, बड़ा मुश्किल से उनको समझाना पड़ा, नहीं कृष्ण की पत्नी करो, देवताओं की उपासना छोड़ो, डर लगता था आपको कृष्ण देवताओं की उपासना छोड़ दी तो देवता नाराज तो नहीं हो जाएगी, नहीं देवता इससे कुछ नहीं होते, जब हम कृष्ण भक्ति में जो हैं देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, देवता कुछ तब होते हैं जब उनको सम्मान ना दिया जाए। आगे कैसे करें, देव दो करेला कृष्ण बड़ा दुखा, गण कहा कृष्ण पूजा करेला से सुखा, कृष्ण बड़े दुखी होते हैं कब, देव द्रोह करेला, इसने देवताओं पर द्रोह किया, देवताओं की अवहेलना की, कृष्ण को बहुत द्रोह होता है, गण कहा कृष्ण पूजा करेला से सुखा, कृष्ण को सुख होता है जब उनकी पूजा उनके गणों के साथ की जाए, उनके भक्तों के साथ की जाए, बड़ा सुख कृष्ण बड़ा सुख, लेकिन देव द्रोह किया भक्तों का द्रोह किया, भक्त है वो कृष्ण बड़ा द्रोह, कृष्ण को बहुत द्रोह, तो ये बात समझिए, इसके तात्पर्य में एक फिर से भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इस शिव पर गलत मतलब ना ले, शिव अगर मैं नहीं रहेंगे ठीक आप बोलिए, आज अपने अच्छा पॉइंट बताया, हम यही सोच रहा था अच्छा माता जी कोई बड़ा होता है, जैसे मैंने नवरात्रि रखने बंद कर दिए हैं, ठीक हो रहा बेटी की शादी नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ हो रहा है, शायद उसका प्रकोप तो नहीं है, जैसे मैं शिव जी के मंदिर जाना बंद किया कुछ गड़बड़ हो रही है, आपने सही बोला देखा पूजा करनी चाहिए, पूजा नहीं बोला आपने बोला, क्योंकि भगवान जब बड़े वाली इंद्र की पूजा कर रहे थे तो भगवान नहीं कुछ पूजा नहीं करो, पूजा खाली देरी होगी, एक बार ईश्वर कृष्ण क्योंकि जब हम देवताओं के मंदिर में जाते हैं वो लोग देवताओं की जो उपासना करते हैं उनको भगवान से स्वतंत्र या भगवान के समान समझते हैं, वो पूजा से कृष्ण और द्रोहित होंगे, वो गुरु वो भी देवद्रोह माना जाए और कृष्ण भी बड़े दुखी होंगे उसमें, देवताओं को यथा उचित जो सम्मान है वो देना हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना, बात स्पष्ट है कि नहीं, शनि के बाद फिर दोबारा से और चार इतने सालों के बाद शाम को ऐसे मालूम चला, इसको सही ढंग से समझना है, और अभी से हमें ठाकुर इसी बात को समझा रहे कि कृष्ण दोनों तरफ से बड़े दुखी होंगे कि अगर देवताओं को हम अपमान करेंगे और उन्हीं के समान देवताओं की पूजा भी करेंगे, दोनों तरफ से कृष्ण बड़े दुखी, क्योंकि इसका मतलब हम समझे हमारी श्रद्धा का विभाजन, कई दीक्षित भक्तों ने हमें कई बिजनेस में रुकावट आ गई, बोले कृष्ण का तो ठीक है उत्तम भक्ति कर रहे कृष्ण के लेकिन घर से वाले भी ठंड तो चाहिए थोड़ा बहुत देवताओं की पूजा भी करते साइड बाई साइड कोई दिक्कत नहीं, और ये लक्ष्मी मिलेगी भगवान की सेवा में तो जाएंगे कहां, ये डोगरा का है भगवान सब जानते यही से आकामो सर्व कामो मोक्ष काम हो जा रहे थे, अगर हर प्रकार की भौतिक इच्छा आपने हमारा इज्जत बोल से कुछ नहीं हुआ शायद है भी अभी क्या करना है, ये श्रद्धा का विभाजन देख इसमें क्या हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना देवता प्रसन्न होंगे ना भगवान प्रसन्न होगा, हम तो प्रसन्न कैसे रहेंगे भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें और इस विधान को समझने का हमने किया, कई भगवान राजा देवी को नवयोगी ने बताया कि देव ऋषि भूत भूत आपने नाम के प्रणाम नाम इंद्रो नारायण नहीं चला सर्वात्मना या शरणम शरण्यम तो धर्म परिणत्य कर कि देवताओं के पति ऋषियों के पति जनसाधारण के पति ऋषियों के प्रति और पितरों के पति हमारा कोई ऋण नहीं रहता परिणत्य हम सारे कर्म हमारे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अगर हमने पूर्ण रूप से भगवान के चरणों की शरण ग्रहण ये पूरा आश्वासन होना चाहिए और साथ ही साथ जब हमें देवताओं के मंदिर में जाएंगे पूर्ण रूप से आदर देना चाहिए उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवता नाम बहुत सक्षम है केवल इंद्र शक्ति में ही नहीं और शक्तिशाली है और देवता जी अगर राजा देवी को जीवित करने की उनमें क्षमता है, जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य में क्षमता है उन्होंने बलि माता को पुनः जीवित कर दिया तो क्या देवताओं की क्षमता नहीं होगी, भागवत में कौन सा प्रसंग आता है कि एक अच्छे भक्त ने देवताओं को थोड़ा सा निराश कर दिया, भागवत ने कौन सा प्रसन्न है कि अच्छे उन्नत भक्त ने देवताओं को निराश कर दिया। नंद महाराज जी मतलब कृष्ण के कहने ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जी भाई उत्तम का वध किया यक्षों ने, तो ध्रुव जी को इतना क्रोध आ गया कि वो यक्षों में हल्का पुरी में गए और खूब घमासान युद्ध किया और कई यक्षों की हत्या कर दी। तो वहां के स्थान में मनु आए, मुझे क्या कर रहे हो, क्या कर रहा हूं मैं भक्त लोग, एक यक्ष ने आपके भाई को मारा, अपने यक्षों को मार दिया, तो अति रोष है, इतने ज्यादा क्रोध है, क्षमा करो। और ऐसा करने से उन्हें कुबेर और शिव जी के प्रति अपमान किया, कभी वहां पर दोबारा और कभी वहां पर कुबेर जी प्रकट, और कुबेर जी ने ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देना शुरू किया, बोला मुझसे आप क्या चाहते मांगो, ध्रुव महाराज ने कुबेर से क्या मांगा कि मेरे भगवान के चरणों की स्मृति हमेशा बनी रहे। कुबेर से धन नहीं मांगा, भगवान के चरणों में मेरी स्मृति बनी रहे आप निरंत। और इसके बाद जब ध्रुव महाराज वापस भगवत धाम जा रहे थे तो नंद और सुनंद पूरा विमान लेकर खड़े हैं, लेकिन वहां पर सारे ऋषि बन थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आइए विमान में बैठिए, विमान में बैठने से पहले हमारा क्या करें, सभी ऋषि मनों को प्रणाम करें, भगवत धाम जाना सुनिश्चित है, इसके बाद प्रणाम। तो ये भक्तों का ईश्वर देखना चाहिए, भक्त लोग हमेशा नालायक रहते हैं कृपा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, क्योंकि हमारी भक्ति का जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो कृपा है। हमारा जो साधना है, जो जप है, जो तपस्या है, एकादशी व्रत है, शास्त्रों का अध्ययन है, सब कुछ कीर्तन है, श्रृंगार है, जो भी हमारी साधना है, उसका केवल एक उद्देश्य है कि भगवान के और भक्तों की कृपा को हम आकर्षित कर सकें। इसी कृपा को आकर्षित करके हम साधना भक्ति से भाव भक्ति महापुरुषों से जुड़ा सकते हैं, एकमात्र कृपा है। स्वामी जी मुझे प्रयास नहीं करना, मुझे सारे प्रयास करने हैं, ये सारे क्या दिखाएंगे कि मैं भक्तों के भाग्य में कितना सिंसियर हूं, और उसी को देखते हुए कृपा हमें रिलीज होगी। तो चाहे देवता का भगवान के भक्त हैं, हमें ये कैसे अज्यूम कर लेंगे कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूं, तो श्लोक सीख लिए 16 बार जब शुरू करेंगे तो हम उन्नत होगी, देवताओं से भी उन्नत हो, बिल्कुल सब और उन्नत, इसलिए उनसे कृपा हमसे भक्ति की भी मांग, भक्ति की भी मांग के हम उन्हें उन्नत। तो यहां जब साधुओं ने उनको बोला कि आप अगर हमसे प्रसन्न हैं तो राजा देवी को जीवित कर दीजिए, बता उसको जीवित हो जाएंगे, राजी बोलो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए शरीर, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा देवी शरीर छोड़ने से पहले फ्रस्ट्रेटेड थे, बीमार थे, परेशान थे, आईसीयू में एडमिट थे, उल्टे लटके हो गए थे, कौन जाएगा ऐसे शरीर थे, नहीं गोपाल चंदन में लेक्चर दे रहे थे बॉडी बच्चा खत्म हो गया, और मोटी सी महिला थैंक यू स्वामी जी सांस खुला हुआ सर, तो क्या अच्छा लगा आपको, मुझे अच्छा लगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी, लेकिन ये हालत नहीं थी। अगर मुझे बोले उन्होंने देखता रहा हूं उसी शरीर में एज इट इज राजा के शरीर उन्होंने छोड़ा था, बिल्कुल राजा ही बना देते उनको, बिल्कुल वही चक्रवर्ती सम्राट पूरी पृथ्वी के, नहीं नहीं सोचा बस जब से आगे बता रहे हैं ये शरीर जो है ये दुख का शोक का और भय का कारण है, चाहे कितना ही सुंदर शरीर क्यों ना हो, कितना ही स्वच्छ शरीर क्यों ना हो, ये हमेशा दुख है और शोक का कारण है। देख सकते शरीर है, इस शरीर की हम चिंता में लगे रहते हैं, इसके रखरखाव में लगे रहते हैं और कुछ भी हाथ में जोन सी मर्जी आप पैटी कर लो, एलोपैथी नेचुरोपैथी होम्योपैथी जो मर्जी कर लो, इस शरीर ने हमें तंग करना ही करना है। युवा अवस्था में रिलाइजेशन की नहीं होती, जैसे उम्र पड़ती है शरीर हमारा गुरु बनता जाता है, सिखाता है देखो कुछ नहीं हाथते है कुछ नहीं, इसलिए शरीर के बंधन में फंसने का कारण नहीं फंसना उद्देश्य। हालांकि अपनी ठाकुर जी प्राप्त करते हैं आप मुझे दोबारा जन्म देना भी है और किस घर के घर में जन्म दो, किसी वैष्णव के घर एक कीट भी क्यों ना बना दो, मुझे ब्रह्मा जी को बात नहीं चाहिए, हाँ वैष्णव के घर में एक कीड़ा बना दो तो बहुत महाप्रसाद पाऊंगे। और चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना करते हैं, मम जन्मनि जन्मनि करे अपराध करते हैं, मेरे कई जन्म हो जाएंगे, हर जन्म में क्या मिले आपकी आगे दुखी करती है। तो जन्म ऐसा नहीं, अगर कोई जन्म मिले भी तो साधारण जन्म नहीं, ऐसा जन्म उसने प्रमाण किया दुखी करती है, इसलिए उस शरीर बंधन से ऊपर अगर नहीं अपने से दिखा रहे हैं इस शरीर के प्रति आसक्ति कैसे कम। जो ये श्लोक है यहाँ जन्म न जन्म न सुंदरी कविता मां जगदीश काम है मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति का हेतु की। भक्ति और ठाकुर जी अपने शिक्षा में बताते हैं शिक्षा में दक्षिण कि ये जो श्लोक है ये भक्ति की रुचि की अवस्था को दिखाता है, भक्ति की विभव अवस्था है श्रद्धा से लेकर प्रेम, ये भक्ति की रुचि की अवस्था को दिखाता है, यानी कि रुचि की अवस्था में हमारे शरीर से देहानुभूति पूरी समाप्त हो जाती है। तो अभी अगर हम भजन क्रिया न भजन की स्थिति में है तो भजन क्रिया को उत्साहपूर्वक करेंगे तो हम भी स्थिति में आ सकते हैं, नहीं चाहिए श्री देना भी है तो इसलिए कि आप इन्हें आए तो भी भक्ति में, लेकिन माया इतनी प्रबल है और हर किसी को शरीर से इतना मोह है, इतना सुन लिया हमने इतना सुन लिया फिर भी शरीर सबसे प्यारा है। और हम देखते हैं शरीर में दो द्वार है और लोग के लोग बारों से कुछ सुगंधित पदार्थ में निकलता नहीं है, गंदगी ही निकलती है, गंदगी ही करती। अगर किसी कमरे से कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है और उसके हाथ में सोना ही सोना है तो क्या इंप्रेशन जाएगा, कमरा किससे भरा हुआ है, हमारे शरीर के लोग बाहर से गंदगी करके निकल देते हैं, होता है गंदगी खाली पैकेजिंग है, चमड़ी और फिर चमड़ी को हम चलकाते रहते हैं और अंदर की गंदगी को दूर करके इतना संघर्ष करते हैं। दिल्ली में खासकर आते हैं लंग्स में कंजेशन है, पेट में कॉन्स्टिपेशन है, नाक बंद है, सब कुछ खराब है, ऊपर से जमा कर जिम में जाके बढ़िया मसल करते हैं, अंदर से बिल्कुल खराब है और गंदगी निकालने की इतनी मेहनत करनी पड़ती है, गंदगी निकलते नहीं, वो डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, शेम्स में जाते हैं फिर से गंदगी आ जाती है। ऐसे कोई कपड़ा है, उस कपड़े को अलमारी में पड़ा रहे उसमें बदबू आती है, लेकिन एक भी कपड़ा डालो उसके बाद कितनी बदबू आती है, शरीर का तन करते ही इसमें बदबू आती है, कितना मजा है। एक मेडिकल स्टूडेंट से इतना माया कितनी प्रबल है कि मेडिकल कॉलेज में हम पोस्टमार्टम करते हैं, मृत शरीर को चीन फाड़ करते हैं, अंदर सारी गंदगी खून मार्ग कर दिखाई दे रहा है, हड्डियां दिखाई दे रही है, सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष जिसका शरीर फाड़ने क्या है, और एक लड़का और लड़की दोनों काट रहे हैं शरीर, देख रहे हैं क्या गंदगी है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे आकर्षण बना रहा है, शरीर काटते काटते गंदगी उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है, क्या है इतनी भगवान की एक प्रबल माया है। इसलिए हम भक्ति को सही ढंग से करें तो इस देह योग से ऊपर उठे, भागवत के पंचम स्तर में ऋषभदेव जी अपने संदेश देते हैं अपने पुत्रों को, नूनम ब्रह्मदा को परिक्रमा यदि आप मोदी ना तागु मन या तात्मन मतलब अपनी देश का आस देगा, कि लोग इतने मूर्ख हैं कि शरीर को आनंद देने के लिए वो तरह तरह के पाप कर्म करते हैं और जानते हैं कि शरीर जो मिला है ये पुराने जन्म में पाप कर्मों का फल है और कितना दुख दे है, और फिर शरीर को सुख देने के द्वारा भी पाप कर रहे हैं, दुख देगा ही देगा। तो इसलिए वो क्या बता रहे हैं कि इस देह योग से कब उठेंगे, प्रीति ना यावत मई वासुदेव नाम मुख्य दे योगे न का, जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक नाम मुख्य दे योगे न का, तब तक इस देह योग से हम मुक्त नहीं हो पाओगे। हमें देह योग से क्या करना है, भक्ति योग में आना है। अभी तो जो आत्मा है पूर्ण रूप से लिप्त है देह में, चेतना पूरी लिप्त है शरीर के ऊपर पर, जो हमारे शरीर को सुख देते वो हमारा मित्र है, जो शरीर को सुख ना दे वो हमारा शत्रु है। लेकिन इस देह योग से ऊपर उठ सकेंगे प्रीति, जब वासुदेव से प्रीति बिना भक्ति यहां भाई थे अविद्या विनाश है, प्रेम शुरू होगा भगवान से जब इस शारीरिक चेतना से हम ऊपर जाएंगे, ये है।
संतों के कृपा से, महात्माओं की कृपा से। अभी पिछले कुछ दिनों में हजरा था भूकंप को स्वामी जी थे ब्रैकर्स ऑन 26 सेकेंड एवेन्यू, तो वहां पे बता रहे हैं भूकंप गोस्वामी जी का, उनका नाम माइकल ग्रैंड था, तो वो बहुत अध्यात्म की तलाश में थे, अलग अलग गुरुओं के पास जाते थे और कहीं देख नहीं पा रहे थे। किसी ने बताया बॉबी स्ट्रीट में एक स्वामी जी हैं, मंडे बैठे थे, शाम को लेक्चर देते, वैसे घूमते घूमते वहां पहुंच गए और वहां अंदर बैठे, वहां प्रभुपाद जी पहला लेक्चर थे, उनके लिए पहला लेक्चर सुन रहे थे, और प्रभुपाद बार बार लेक्चर में बोल रहे थे नॉर्थ ईस्ट बॉडी है, नॉर्थ ईस्ट बॉडी है, नॉर्थ ईस्ट बॉडी। तो उस माइकल को क्या समझ में आया, स्वामी जी इज नॉर्थ ईस्ट बॉडी, बार बार इतनी बार ही बोल रहे थे स्वामी जी शरीर ये कौन है, यानी कि कितना गहरा ये योग है, ये देखा क्या प्रभुपाद की कृपा से कितना उन्होंने दिया, कितना उनकी मानसिकता बढ़ी, प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ है। अगर हम प्रभुपाद जी की कृपा को दें, भक्तों की कृपा को इकट्ठा करें, उसे भी हम बताया जाए, सबसे हम कृपा की आशा प्रभुपाद जी ने चाहिए रिस्पेक्ट और सर्व और लव और सबसे प्रेम करने का प्रयास करें, सेवा करें, आदर करें, आदर तो कम से कम सबका करें ही करें, शुरुआत तो यहीं से ही, अगर हम प्रेम नहीं कर पा रहे इस अवस्था में आदर तो हम सबका ही करें मिनिमम, और इससे हम सबसे कृपा की याचना करें और भक्ति को भक्ति की भजन क्रिया को बहुत उत्साहपूर्वक करें, तभी हम सबसे बड़ा अनर्थ है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तभी होगी जब हम ये जान जाएंगे हम शरीर नहीं आत्मा, ये पहला स्टेप है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आने क्या भगवान ने अभी सबसे पहले ये स्टेप बताया कि तुम देही हो, देह नहीं हो, देह के अंदर रहने वाले हो, देह नहीं हो। तो ये ज्ञान यहां पर प्रकाशित हो गया बुद्धि में, कन्विक्शन हो गया कि रियलाइजेशन नहीं है, कन्विक्शन से रियलाइजेशन बनता है कृपा, इंटेलेक्चुअली करते हैं ध्यान से हम प्रूफ भी करते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, जाते हैं कमिया देते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा वो है, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर से आत्मा, कोई नहीं समझ आएगा, कन्विक्शन है बिल्कुल सही बात कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन ज्ञान खाली यहां पर है, यहां प्रकाशित नहीं होता है ये पूरा जीवन कृपा कब मिले, ये कृपा होना जन्म नाम होते भी मिल सकती है, ज्ञान और मान का पता है ज्ञान ही है और जन्मों के बाद पूछ मिलेगा, या फिर कृपा हम पे निर्भर करता है कि हम कितने उत्सुक हैं इस कृपा को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण। मैंने जब कहा मुझे देह नहीं चाहिए तो आगे फिर पढ़ेंगे लेखन उन्होंने आध्यात्मिक देह दिए बोले भगवान के पार्षद करिए और जब आपकी इच्छा हो तब प्रकट होना, जैसे भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, तो बिना देह के हम भक्ति नहीं कर सकते, और इस देह को भी अगर हम सही ढंग से लगाएंगे, कल के श्लोक में था बहुत विस्तार में बताया गया हमने सफल इंडिया में, इस शरीर में भी रहते हुए शरीर को स्वस्थ करके और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाए, यह एक सहकर्म से करना अनुसार कर्म इंद्रस्वी जीवन में सब सकते, इसलिए शरीर में रहते हुए हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं अगर हम पूर्ण रूप से भक्ति में
आत्मा है, लेकिन आत्मा जैसे ही देह में प्रवेश करता है देह को गुरु को स्वीकार करते हुए वो खुद देह देह में लिप्त हो जाता है, पूर्णता मतलब कैसे देह में देह से विरक्त कैसे किया जा सकता
है, बताया जीवन मुक्त होना पड़ेगा, स्थिति में जीवन मुक्त है कि जो भक्त है इस देह से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो एक सूखा नारियल नारियल ऊपर कवच है लेकिन अंदर की जो गिरी है बिल्कुल उस कवच से बाहर वो जीवन मुक्त हो सकता है, वो कैसे होगी अपने मन वाणी और कर्म से पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये जो देह भी है भौतिक देह क्या रहेगा खुल जाएगा आध्यात्मिक,
मुझे आपने बताया कि हमारी इंद्र क्या है जब तो आपको थोड़ा कंट्रोल होती है और जबकि हम इस टाइम जो हमारी इंद्र की कुछ भगवान की कृष्ण है,
कैसे समझे भगवान अपने देवताओं के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, अल्टीमेट स्वामी ऋषिकेश ही और उन्हीं के हमने देवा को लगा के इंद्रियों को शुरू कर सकते, लेकिन जो आंखों में देखने की शक्ति है वो सूर्य के माध्यम से भगवान इन देवताओं के माध्यम से हमारे इंद्रियों को शक्ति,
प्रश्न है कि दिन वाला ने मुझे प्राप्त नहीं किया, अभी क्या कर दिया हमने कौन से शरीर है, तो इस प्रसंग कोई माता जो आध्यात्मिक शरीर में समान के पार्षद है
जैसे पढ़ते हैं सुनते हैं कि जो देवता है वो लोग भी जो है वो जीवन और मरण के चक्र के बीच में है, उनकी भी मृत्यु निश्चित है। और फिर हम देखते हैं कि जब विष्णु महाराज जी ने कहा कि उनके मतलब उनके जिन्होंने यज्ञ किया तो उन्होंने कहा कि इनको जीवित कर दीजिए इस यज्ञ के बाद, तो उन्होंने कहा था शास्त्रों, तो जो खुद ही जीवन मरण के अंदर है तो वो कैसे किसी को कह सकता है कि आप जो है आपको मैं जीवन प्रदान कर देता हूँ, तो भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है देवताओं को, और फिर तो अगर शक्ति दे रखी है तो जब ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे आप अमर कर दीजिए, तो फिर तो वो हाँ बोल सकते थे कि चलो ठीक है आप आ जाओ अगर मैं दोबारा आपको जीवित कर दूंगा क्योंकि मेरे पास तो वह शक्ति है, तो फिर वो उस समय वरदान दे रहे थे। तो दोनों चीजों को थोड़ा समझना चाहिए।
देवताओं में ये शक्ति है कि मृत्यु को जीवित कर सकते हैं, देवताओं में ये शक्ति नहीं है कि जन्म मृत्यु को चक्र को हरे ग्रामा मृत्यु चल केवल हरे ही जन्म मृत्यु के चक्र को होता है, देवता अमर नहीं बना लेकिन मृत को जीवित कर सकते हैं, अमर नहीं है कि हमेशा के लिए अमर, तो शुक्राचार्य जी बलि महाराज मर गए थे लेकिन जीवित कर दिया, ये तो आज के डेट में बहुत बड़ी बात है, उसमें नॉर्मल कि वो जन्मदिन के चक्कर को ही पाया, और राजा मेले के पहले से कैडेट इतने ज्यादा थे, मेरे भक्त थे, उन्होंने आशा की आपकी कृपा हो जाए तो मैंने ठीक है कृपा दिया, ऑलरेडी वो इतने उनके भक्त थे हृदय कश्यप को ब्रह्मा जी दे सके थे क्योंकि हृदय कश्यप को था ही तो असल होता
का बोलती थी केवल कृष्ण ही चाहिए,
मना कर नहीं मानती गोपियां भी जाएंगे। मैं क्या मांगूंगा, मांगते मांगते ही जाऊंगा बोलो बेटी की शादी में चलाओ, मेरी भक्ति में बाधा पड़ रही है, जहां जाऊंगी माता जी जा रही शिष्य के पास, भक्ति में बाधा आ रही, मैं चेक करती हूँ बेटी की चिंता हो रही है, शिष्य के पास आई बेटी की चिंता दूर हो रही, माला अच्छी हो गई। ऐसे आर्गूमेंट माइंड देता हूँ, नहीं हमारी भक्ति की इच्छा कोई नहीं है, अपने आप से ईमानदारी करते तो हम देवद्रोह ही बन रहे हैं। देवताओं के कृष्ण भक्ति में आने के बाद मिलते जा रहे हैं, कृष्ण भी प्रसन्न नहीं है, देवता भी प्रसन्न। अगर अपने कोई भौतिक लाभ चाहिए कृष्ण से खुल के कहो, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोलो, ईमानदार रहना चाहिए, खुल के बोलो हाँ जी मुझे चाहिए, उनको दिक्कत है, इससे मेरे को समस्या आ रही है, मैं साधन काम कर पा रहा हूँ, लाभ आ रही मैं दे दूँ, जो आपको ठीक कर रहे मुझे ये चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत खुश प्रसन्न हो, लेकिन भगवान को साइड में रखे यहाँ आने में विश्वास शून्य बोल के ये सब बोल के वहां जाके कोने में कर रहे हैं थोड़ा सा। और ये नहीं बोला कि आज की प्रसंग से ये नहीं है कि हम भूले कहां का किसी देवताओं का मंदिर है, वहां जा रहे हैं भक्ति में आके पढ़ने के लिए, इसलिए प्रार्थनाएं शुरू हो गई, हम लोग शिव जी के मंदिर वहां जाना है, सोमनाथ जाना है, वहां बड़ी महिमा है, वहां से मंदिर है, ये नहीं हम उस पैसे नहीं गए देवताओं का मंदिर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में मंदिर शिव जी का मंदिर है, सीना निकल जाएगा कृष्ण कृष्ण भगवान के भक्त हैं, पूजा नहीं करते कि बोलो वहां पे पंडित मुझे आइए आइए क्या बोल रहा है क्या आइए है शुरू करते हैं, ऐसा नहीं करते हमें भगवान की भक्ति का भी हमारे हरे कृष्ण महामंत्र की चिंता करते
हैं।
करवाने वाले की मृत्यु हो जाए यह संपन्न माना जाएगा,
बड़ी विशेष परिस्थितियां संपन्न नहीं माना
माना
जाएगा।
आपने
एग्जाम दिया होगा आने से पहले आपकी मृत्यु हो
गई
है,
काम तो पूरा हुआ
नहीं, देखा देखिए ना विष्णु ने किया पूरा और उनके शरीर को सुगंधित तेलों में रिजर्व किया, इसी बात करते हैं विष्णु में कितनी शक्ति थी, निश्चित रूप से इसलिए कहते हैं इसे उपयोग करना भक्ति का मतलब ये है कि अपने इंद्रियों को मन को बुद्धि को सही ढंग से उपयोग करना। हाँ माई कौन कहते हैं
Thank you.